ಅಂಗಶ್ಯಾಮಲಿಂಗಟಾಭಿರಮಿತು ಮಂದೆ ಚತುರ್ದೇವರ ಜಟ್ಟಂಜಾಕುಟರೋಷಿ ಸಾಂಗಿತ ಸಮಪಟ್ಟಂಬರಸ್ಯ ಮಿಂದಾರಣ್ಯ ನಿವಾಸಿನಂ ಹೃದಿಲ ಸದ್ದಾಮಾಭಿರಾಮೋದ ರಾಧಾ ಸ್ಕಂದ ನಿವೇಶಿತ ಸರಸಿದಂ ಧ್ಯಾಯಿನ್ಯ ಅಪರಾಧ ಸಿಬ್ಬಾಶು ಕಾಮಾದಿತರಂ ನಮಸ್ತೆ ಕೃಪಾಮಯಿ ಸ್ವಾಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪನ್ನ ವಂದೇ ನಮಸ್ತೆ ಗುರವೇ ಗೋವಿಂದಾಯ ರಾಧಿಕಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಸರ್ವಭಕ್ತಾಯ ಯಂ ಪ್ರಪ್ರಯಂತಮನುಕೇತಮಕೇತಕೇತ್ಯಂ ದ್ವೈಪಾಯನೋ ವಿರಹಕಾತರಯಾತಿ ಭಾವ ಪುತ್ರೇತಿ ತಂತಯಾ ಕರೋ ತಂ ಸರ್ವಭೂತಯಂ ತವೈವಾಸ್ಮಿ ತವೈವಾಸ್ಮಿ ನ ಜೀವಾಮಿ ತ್ವಯಾ ವಿನಾ ಇತಿ ವಿಜ್ಞಾಯ ರಾಧೇ ತನ್ನಯ ಮಾಮ ಚರಣಂ কি করবে আচ্ছা থাকবে সময় তখন কিসে যাবে কাজ পাবে পিছলি একাদশী মে वराह देव का शायद वराह देव का भी भाव भी था वराह देव रुष्ट हो जाएंगे यदि हम लोग उनका कुछ नहीं करेंगे करने को था तो भी कल या परसों नित्यानंद ತ್ರಯೋದಶಿ ಕಲಿಯುತ್ತೋದಶಿ ಬರಾದೇವ್ ವಿಭಿನ್ನ ಕಲ್ಪೋ ಮೇ ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಸೆ ಆಗ जैसे कृष्ण लीला में जब भी वो अवतीर्ण होंगे तभी कौन सा आएगा पुतना होगा होगी पुतना वध होगा ये कोई जरूर बकासुर मारेंगे ये कोई जरूरी नहीं नैमित्तिक लीलाएं परिवर्तन हो सकती है नित्य जो लीलाएं हैं वो ठीक रहेंगी किंतु नैमित्तिक लीलाओं में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा उसी तरह से बड़ा भगवान के भी अवतार में जब जब जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार में वो पहले तो इन लीलाओं में मत्स्य कूर्म बरा नृसिंह नृसिंह वामन परशुराम राम इत्यादि में एक जैसे क्रम विकास देखा जाता है उन लीलाओं में भी कुछ क्रम विकास उन लोगों की लीलाओं में भी क्रम विकास होता है वो क्रम विकास होता है भक्ति की भावना के अनुरूप भगवान का आविर्भाव जीवों के कल्याण के लिए होता है जब जैसा जैसा जैसी जैसी जरूरत होती है उसके अनुरूप में भगवान के आविर्भाव होते हैं। ये गुरु जी कहीं हमने शास्त्र में नहीं देखा, गुरु जी के विचार, गुरु जी ने बतलाया ये सब कर्म विकार। जैसे मत्स्य केवल जल में चलती है और उसको सेंस अधिक नहीं, ज्ञान का विकास नहीं, सबसे कम, यहाँ तक कि उसके प्राण चले जाएंगे उसका भी वो विचार नहीं करती, झप लपट करके कोई चीज पकड़ सकती है। इसलिए विकास में जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य चरितामृत में बतलाया है,
पांच प्रकार के चेतन,
हाँ चेतन में आच्छादित,
मुकुलित,
मुकुलित,
संकुचित,
संकुचित,
विकसित,
विकसित,
पूर्ण विकसित,
वैसे ही मत्स्य, इसके बाद में कूर्म, इसके बाद में बराह। बराह में दो बराहों का उल्लेख स्पष्ट रूप से मिलता है, वो ब्रह्मा जी के कौन कौन से मन्वंतर में वो आते हैं। एक में पहले प्राचीन में कृष्ण बराह और दूसरे में श्वेत बराह।
वीर भागवत में आपने बताया चार प्रकार के बराह देखा होता है,
कौन कौन, कौन कौन
याद नहीं, चार प्रकार
उनको भी याद नहीं है। तो उनमें भी बहुत विचार है, ऐसे ही नहीं हो गया, बहुत विचार है। भगवान की एक एक क्रियाओं में, एक एक लीलाओं में बहुत तरह के विचार होते हैं। कृष्ण बारा में उन्होंने वेद का उद्धार किया था कि पृथ्वी का उद्धार है। पृथ्वी में गुण है गंध का, यदि पृथ्वी नहीं रहेगी तो सृष्टि का कार्य नहीं होगा और भगवान के आविर्भाव भी नहीं है। तो ये ब्रह्मा जी सोच रहे थे ये सृष्टि कैसे करें, चारों तरफ में केवल समुद्र ही समुद्र, पानी ही पानी, बहुत चिंता करके उनके दिमाग में नहीं आए। फिर तप किया उन्होंने, तप हुआ, फिर तपस्या की, इसके बाद में नाली के कमल लाल के नीचे ऊपर गए, बहुत कुछ भी था नहीं मिला कमल लाल। उसके बाद में तपस्या करने के बाद में भगवान उनके मन ही में आविर्भूत हुए और आविर्भूत होकर के जवान हम जथा भावो जदरूप गुण कर्म का, कैसा मैं हूँ, कैसा जीव तत्व है, कैसे माया तत्व है, ये सब के संबंध में उन्होंने बतलाया। रीते अर्थम प्रतीत न प्रतीत, माया के लिए बतलाया जो अर्थ नहीं है, जो अर्थ रीते अर्थम, रीते बिना अर्थ के जो है उसको कहते हैं माया। माने क्या, अर्थ भगवत भगवान है, भगवान के अतिरिक्त जो कुछ है वो अर्थ नहीं है। तो रीते अर्थम, बिना भगवत स्वरूप के जो कुछ भासता है, जो कुछ दिखता है, वो सब माया है। और उसका दो उदाहरण दिया, जथा भाषो तथा तमह, जथा आभासो, सूर्य जहाँ नहीं है किंतु सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है पानी में, तो पानी में देखने वाली जो छाया होती है सूर्य की, वो सूर्य है वो नहीं, और जहाँ सूर्य नहीं है वहां पर अंधकार है। अंधकार माने क्या, जहाँ सूर्य नहीं है उसका नाम, किसी कारण से ढक गए हों तो वो है अंधकार। ये दो उसका प्रादेशिक उदाहरण दिया। तो माया क्या है, और बिना भगवत तत्व के माया रह नहीं सकती, किंतु भगवान नहीं, भगवान के अतिरिक्त भगवत स्वरूप में जिसकी स्थिति नहीं है, अब बिना भगवान के वो माया रह भी नहीं सकती, यही अचिंत भेद आदि भगवान के अतिरिक्त, किंतु भगवान के छोड़ करके वो अलग कर रह नहीं सकती, ये माया है। भगवान के सब समय पीछे अवस्थित रहती है, और जो जीव भगवान को पीठ पीछे कर करके रखता है उनको पकड़ लेती है, क्योंकि वो पीछे रहती है, भगवान के सामने नहीं जाती। कोई जीव यदि भगवान का उन्मुख हो जाए, बस झट माया उसे छोड़ देती है, भगवान के समीप पहुंच जाती है। तो ये बराहदेव ब्रह्मा जी ने देखा, क्या करूं, देखते देखते ही सृष्टि करूं कहां, तो ब्रह्मा जी थे कहां, कमल में, कमल के ऊपर, उनके नाक से एक छोटा सा चावल में जो कीड़ा होता है, लाल लाल घून जिसको कहते हैं, हाथी सुन जैसा, बस एक निकला, छींक आई और झट निकला, और निकलते ही दूना का दूना बढ़ता चला गया, विराट आकार धारण कर लिया, और पैर नीचे ऐसे करते थे शीर्ष, और एकदम उसमें कूद गया, विराट जोरों से शक्त हुआ, एकदम नीचे पहुंच गया। बड़ा रूप धारण क्यों किया, पृथ्वी को निकालना है, पृथ्वी में गंध है, आकाश में गंध नहीं है, हवा में गंध नहीं होती, पानी में भी गंध नहीं है, और आग में भी गंध नहीं, किसी में गंध नहीं है, केवल मात्र पृथ्वी में गंध है। बस उसके द्वारा सीधा उसका खोज लगाओ, और वहां पर पहुंच गए पाताल में, और उसी समय नारद के जी के उपदेश से या कुबेर जी के उपदेश से वो हिरण्यकशिपु
के भाई हिरण्यक्ष
उनके लिए प्रतीक्षा कर रहा था, और उसके देखते देखते ही अपने दांत के ऊपर में पृथ्वी को कमल की भांति रख करके, सरसों की भांति, और वहां से ऊपर उठे, और उनका पीछा करता रहा, गाली गलौज करता रहा, अपमान करता रहा, और तीर की भांति वो यहाँ पर पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र पर रख करके, और फिर उनसे युद्ध किया। न जाने कितने सहस्त्र वर्षों तक युद्ध हुआ, अंत में एक तमाचा जोर से मारा और बस पितर से हिरण्यक्ष का उन्होंने बलि किया। और श्वेत बारा कल्प में उन्होंने वेदों के उद्धार के लिए ऐसा ही किया, समुद्र में से वेद जो लुप्त हो रहे थे, वेद कैसे लुप्त होते हैं, असुरों के विचारों के द्वारा आच्छादित हो जाते, कोई मानता नहीं, ऐसा नहीं कि ये वो पुस्तक ही लुप्त हो गई, वेद या श्रीमद् भागवत या गीता कोई कागज की पुस्तक नहीं है, ऐसा मत समझ, कागज की पुस्तक नहीं, क्या है वो, दिव्य ज्ञान। पुस्तक जल जाएगी तो गीता जल जाएगी, गीता नहीं जलेगी। जैसे हम लोगों का शरीर जल करके खत्म होने पर भी आत्मा अमर है, ऐसे ये भागवत पुराण उपनिषद वेद ये नित्य है, जब तक इसके पालन करने वाले उसके होते हैं तब तक वो जगत में आविर्भूत हो, जब उसके पालन करने वाले नहीं रहेंगे लुप्त हो जाते हैं। इसी तरह से वेदों का लुप्त होना माने इतने नास्तिक या उस तरह के भगवत विरोधी भाव हो जाते हैं जब इसका कोई पालन नहीं था, जैसे आजकल क्रमशः शास्त्र लुप्त हो रहे, हो सकता है कुछ दिनों के बाद में गीता भागवत रामायण पुराण उपनिषद कोई मानेगा ही नहीं, धर्म करो मानेगा नहीं, बस ये धर्म भी लुप्त हो जाएगा या वो सब भी लुप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से वेद लुप्त हुआ। तो भगवान की देवताओं की प्रार्थना से, ब्रह्मा इत्यादि की प्रार्थना से उन्होंने शुक्ल बारा के रूप में आविर्भूत होकर के और इनका उद्धार किया। जिस समय में हिरण्यक्ष का वध किया और पृथ्वी में आविर्भूत होकर के जब अंतर ध्यान होने लगे तो गंगा के किनारे सोरों में अपनी एक प्रतिमा रख गए और उसको कुबेर को दिया पूजा करने के। कुबेर उसकी पूजा करते थे।
कुबेर विष्णु ने दिया था,
विष्णु ने खुद ही दिया था। और उस मूर्ति को कुबेर जी, जब लंका का राज्य उनको मिला, लंका पूरी उनको मिली और पुष्पक विमान मिला, सोने की लंका बनी हुई थी उनके लिए, तो वो लंका में जाकर के उसकी पूजा करते थे, उनकी प्रतिष्ठा की। फिर रावण का काल आया तो उन्होंने कुबेर को वहां से भगा दिया, पुष्पक विमान और ये दोनों मूर्ति भी उनको रख दी। फिर रामचंद्र जी ने रावण को हराया और जीत करके लंका विभीषण को दे दी, किंतु वो मूर्ति खुद लेकर के चले आए अयोध्या में। अयोध्या में उसकी खुद पूजा इत्यादि करके पीछे से लवणासुर का वध करने के लिए शत्रुघ्न को आदेश दिया। शत्रुघ्न ने कहा कि मैं आपका विरह नहीं सह सकता, इसलिए यदि कृपा करके हमको वो मूर्ति दे दीजिए तो मैं मूर्ति को लेकर के और यहाँ पर मथुरा जाऊंगा। तब उस मूर्ति को लेकर के आए और मूर्ति को लेकर के यहाँ मथुरा में प्रतिष्ठित कर दी, द्वारकाधीश के पीछे तभी से ये प्रतिष्ठित मूर्ति है। और उसी के बल से उन्होंने लौड़ासुर का वध किया और तब से वो मूर्ति कृष्ण बारह के रूप में और श्वेत बारह के रूप में भी यहीं पर सिद्ध विग्रह मंदिर। मथुरापुरी बहुत प्राचीन नगरी। इस तरह से और भी दो तीन बराहों का उल्लेख लरूप गोस्वामी ने किया है, उनको याद नहीं सर। लघु भगवता मैंने सनातन गोस्वामी ने किया, उसी का उन्होंने छोटा छोटा लिख करके लघु भगवता में किया। ये तो देखने से पता लगा, मुझको देखना याद है। तो कल स्वनियम दशकम से सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी का पंचम श्लोक हमने पढ़ा, तो उसमें उन्होंने बतलाया संक्षेप में, मैं पूरा नहीं बतला सका। अनादि शादी बात कृष्ण अनादि हो अथवा अर्वाचीन हो नवीन। कृष्ण पटु अति मृदुर हुआ, सब काम में कुशल हो, अथवा पटु माने मृदुल माने अपटु, अपटु माने क्या, कोई चीज में दक्ष नहीं है, शक्ति नहीं है, वो एक नर बालक है। और पटु का तात्पर्य यह है भगवत तत्व होता है खूब गंभीर, षड़ैश्वर्य पूर्ण, सर्वशक्तिमान। कृष्ण यदि सर्वशक्तिमान नहीं है अथवा कृष्णचंद्र उनमें शक्ति नहीं है या सर्वशक्तिमान नहीं है और अंतर्यामी नहीं है, भूत भविष्यत वर्तमान भी नहीं जानने वाले हैं, किसी कार्य में दक्ष नहीं है, चोर हैं, छुट्टे हैं या कुछ भी हो, जो कुछ भी हो, वही हमारे जन्म जन्म में उनके प्रति हमारी आस्था है और हमारे वो प्रभु है। ये क्यों कहा? कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण में चरित्र नहीं था, बचपन से ही झूठ बोलते थे, कृष्ण के माता पिता का कोई ठीक नहीं, कौन माता पिता है, कहां जन्म हुआ कोई ठीक नहीं, कोई मथुरा कहते हैं, मथुरा वाले भी एक मत नहीं है कि कहां उनका जन्म है। कुछ लोग कहते हैं जो गोकुल में, कुछ लोग कहते हैं मथुरा में, कोई कहते हैं उनका जन्म ही नहीं हुआ, कोई ठीक नहीं, मैया उनकी जसोदा है कि देवकी है कि कोई है ही नहीं है, अभी तक कोई ठीक नहीं कर सका। बचपन से ही जन्म के साथ ही साथ में सदाचार का विरुद्ध करना आरंभ किया, अपने बाप को सिखलाया कि हमको तुम यहां से गोकुल में भेज देना और कह देना जी हमको लड़का नहीं हुआ लड़की हुई, फिर विपरीत उनको सिखलाया। और परम सत्यवादी वसुदेव जी किंतु उनके कहने से कहने में आ गए और उन्होंने भी झूठ बोल दिया, उन्होंने कल से वहां की लड़की लेकर के यहां आए और जब वो पैर पकड़ करके उसको पटकने चला तो उन्होंने बहुत अन्याय भी नहीं किया, क्या अन्याय भी नहीं किया,
लड़की है लड़का नहीं इसलिए तो मारेगा
नहीं, इसलिए नहीं, उसने कहा कि हमारा लड़का या लड़की होती तो ये मारता कोई बात नहीं, हम इसको बदले में ले आए हैं, यदि बदले में ले आए हैं और इस लड़की को हम जीवित नहीं रह सके तो फिर हम लौटा नहीं सकेंगे, तो वो पुत्र फिर हम नहीं पा, आया समझ में क्या कहा,
बदले में ले आए बाकी
क्या कहा, बाकी तुम यहाँ है नहीं, कहाँ है, बतलाइए मैंने क्या कहा, मैंने हमने क्या बतलाइए, हाँ अरे बच्चा मैं दूसरे से मांग करके लाया बदल करके, यदि ये मर गई तो सदा के लिए उस पुत्र पर हमारा कोई अधिकार नहीं हो जाए, मैं किस मुख से कहूंगा कि ये मेरा लड़का है, इसलिए बड़े चिंतित थे, अपना कुछ जो कोई चीज चोरी चली जाए तो उसके लिए कोई चिंता नहीं है, मेरी चीज है, और दूसरी की कोई चीज ले आकर के खाती के रूप में रखा और वो यदि चली जाएगी तो वो मांगेगा तो हम नहीं दे सकेंगे तो बड़ी लज्जा की बात है, इसलिए वो चिंता कर रहे हैं और देवकी भी चिंता कर रही है इस बच्ची को ना ले, हमारी अपनी संतान नहीं है, बदले में दे करके प्रतिज्ञा करके आए हैं ये ले जा रहे हैं इसको दे जा रहे हैं, और फिर जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं वापस दे करके अपने बेटे को ले आऊंगा और इसको दे आऊंगा, इसलिए वो डर गई, किंतु वो हाथ से निकल गई कल्स के और आकाश मार्ग में जाकर के अष्टभुजा दुर्गा हो गई, बोले अरे कंस तू मुझको क्या मारेगा, तेरे मारने वाला, और चली गई, इसीलिए चली गई कि कभी भी देवकी और वसुदेव जीवन में कृष्ण के ऊपर में अपना उत्तराधिकार न स्थापित कर सके, कभी भी ये न कहें ये मेरा बेटा है, इसलिए ये भी चतुराई है, किंतु उन लोगों ने ऐसा ही किया, लड़की को लौटाया नहीं और कृष्ण को वापस कर लिया, ये सरासरी अन्याय था, यदि मथुरा में जन्म है तो भी, और यदि गोकुल में उनका जन्म है तो अन्याय तो एकदम पूरा ही अन्याय है, इसलिए किसी तरह से कृष्ण वसुदेव जी के लड़के नहीं हैं, उन्होंने खरीद लिया पैसा लौटा दें अपना बेटा ले जाए, तो उन्होंने कभी भी लौटाया नहीं, इसलिए उनके लिए तो कृष्ण बचपन से ही कह दिया पिताजी को, जाओ तुम ऐसे ही कहना, जन्म लिया जिसको जिसका दूध पिया उसी को मारना पड़ा, जैसे भी आई पूतना उसका स्तन पान किया और उसी का उसने धोने पर किया। बचपन से ही चोरी, मक्खन चोरी इत्यादि चोरी, झूठ, मैंने मट्टी नहीं खाई इत्यादि के रूप में। तो ये भगवान में दोष है, ठीक है, कृष्ण भगवान नहीं है, एक साधारण गोप का लड़का है, इसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जन्म जन्म में वही हमारा प्रभु है। किस लिए कहा, इसमें एक कारण है। कारण क्या, कोई भी काम, कोई भी प्रीति किसी के गुण के द्वारा होता है, ये बहुत ही सुंदर है और उससे हमारा प्रीति हो गया, प्रेम, ये बहुत बलवान है इसके प्रति हमारी प्रीति हो गई। कोई बहुत सुंदर संगीत करता है या बजाता है कोई चीज, लोग मुग्ध हो जाते हैं। आजकल क्रिकेट के खेला में जो सबसे अच्छा होगा ना, तो उसके ऊपर में कितने लोग फिदा हो जाते हैं, वो ऐसा ही जगत का कुछ नियम है गुणवान व्यक्ति के प्रति। किंतु यदि सुंदर देख करके हमारी प्रीति हुई और मुख उसका तेजाब में जल गया, सुंदरता दूर हो गई, तो प्रीति खत्म हो गई। एक आदमी खूब बलवान है किंतु उसका बल किसी कारण से खत्म हो गया है, तो प्रीति भी, ये अच्छे अच्छे प्लेयर लोग हैं ना, जब फिर वो नाकाम हो जाता है तो उनको कौड़ी के बराबर कोई नहीं पूछता जब तक वो है तभी तक, क्यों, गुण के लिए, गुण खत्म हो गया प्रीति खत्म हो गई। इसलिए ये कहते हैं हमारी उनकी प्रीति किसी गुण के वजह से नहीं है, स्वाभाविक है, इसी को निरुपाधिक या स्वाभाविक प्रेम का। भगवान के प्रति जो प्रीति किसी कारण से होती है, यदि सकाम प्रीति है तो कामना पूर्ण होने से प्रीति नष्ट हो जाएगी। किसी का बंधुत्व है, किसी स्वार्थ से किसी से मित्रता हुई ना, किसी गुण के वजह से, तो प्रीति कुछ दिनों में नष्ट हो जाएगी। और की तो बात क्या, द्वारका में महिषियों के साथ में शादी हुई, उनकी शादी होने के बाद में प्रेम हुआ। इनका प्रेम स्वाभाविक नहीं है, क्या है, शादी के वजह से, विवाह के वजह से इनका प्रेम, इसलिए इनका प्रेम जो है सामंजस्य प्रेम है, इसीलिए विवाह के हेतु उनका प्रेम है, विवाह नहीं होता इनसे प्रेम नहीं होता, आ रहा है समझ में, विवाह एक कारण है, विवाह नहीं होता प्रेम नहीं होता। गोपियों का प्रेम ऐसा नहीं, कुब्जा का प्रेम कैसा है, उसका प्रेम तो अत्यंत तुच्छ स्वार्थमय, काम के लिए, काम की पूर्ति के लिए, कृष्ण का सौंदर्य देख करके मुग्ध हो गई ने? और अपने स्वार्थ के लिए, इसलिए वो जब तक कृष्ण सामने थे तब तक प्रीति थी, जहां कृष्ण चले गए तब उसकी प्रीति भी, इसलिए इसको साधारणी, साधारणी भी इसीलिए कहते हैं, किस लिए साधारणी प्रेम कहते हैं, इसलिए कि उसका प्रेम सदा है कुब्जा का, किंतु स्वार्थमय है, इसलिए साधारण, उसके द्वारा कृष्ण वशीभूत नहीं होंगे, उसके द्वारा प्रेम उसको नित्य के लिए प्राप्ति नहीं होगी, ये सहायतुक है। और उनका भी सहायतुक है, किनका, महिषियों का सहायतुक होने पर भी, चूंकि पूर्व पूर्व जन्मों से उनका संबंध है, इसलिए सामंजस्य की कोटि में आ जाता है। सामंजस्य किसको कहते हैं, सामंजस्य, दोनों में सामंजस्य करती हैं, अपना कुछ काम भी है और कुछ कृष्ण के प्रति भाव भी, दोनों को मिला देती है, किंतु समर्थ नहीं है जो कृष्ण को वशीभूत करते हैं, लाखों ये हैं, कितना 16,108, किंतु कृष्ण को वशीभूत नहीं कर सकती, दोनों में केवल सामंजस्य स्थापित किया है, क्या मेरी कामना और साथ साथ में कृष्ण को सुखी भी करें, किंतु कृष्ण को सुखी करती हैं किंतु उनका विभाग हो जाता है। जहां एक लड़का हुआ उनका प्रेम बट गया उस बच्चे में और कृष्ण, दो बच्चे हो गए तो दोनों बच्चों में दो प्रेम, दो भाग आ गया और एक कृष्ण, 10 लड़के सबके हुए और एक ही कोई नहीं, जितनी पाटरानियां हैं सबको 10-10, और कृष्ण के प्रेम को बांट दो कितने हजार भागों। इसलिए वहां इन लोगों का प्रेम बटा हुआ है और गोपियों का प्रेम बटाने ठोस सॉलिड है, अखंड प्रेम। शादी तो हुई नहीं, शादी के वजह से इनका प्रेम नहीं है, शादी हो न हो इनका प्रेम वैसा नहीं, समर्थ था। समर्थ माने केवल मात्र कृष्ण का ही सुख चाहती है, अपना सुख नहीं, और द्वारका वाली अपना सुख भी चाहती है।
तो
इसलिए वो समर्थ होती हैं, क्यों अखंड प्रेम रहता है। हम लोगों में अभी अपने कपड़ों में, अपने केश में, अपने रुपये में, अपने सौंदर्य में, शरीर में, स्वार्थ में जितना प्रेम है, प्रीति है, उतना कृष्ण में है। हम जितना अपनी नींद को प्यार करते हैं कृष्ण को उतना करते हैं नहीं, कुछ कुछ है, कुछ कुछ धीरे 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 हो रहा है। यही गुरु सेवा, वैष्णव सेवा, हरि कथा इत्यादि हो तो धीरे धीरे ये बढ़ सकता है। और फिर इन तीनों में से कोई साधारण समंजसा अथवा समर्था के रूप में बदल सकता है। तो जिस प्रेम का कारण कोई रहता है, कोई चीज होता है, कोई अवस्था होती है, वो समर्थ नहीं होता। और वो प्रेम साथ ही साथ गुण के खत्म होने पर अथवा वो चीज दूर होने पर वो प्रेम भी नष्ट हो जाता है। बहुतों के साथ में प्रेम होता है, किंतु जब आदमी अलग अलग हो जाता है तो वो प्रेम भी। इसी तरह से ब्रजवासियों का प्रेम कभी भी नष्ट नहीं, स्वाभाविक, ये उसी प्रेम के अंतर्गत में, ये गोपी के अनुगत्य में भजन करने वाले, इसलिए गोपियों जैसा इनका प्रेम किसी कारण से नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा श्रीमद् भागवत में के श्लोक है, भक्ति, नारद जी ने भी ऐसा बतलाया है श्रीमद् भागवत, क्या भक्ता भयं विभो कामात गोप्या भयात कंसो
कामात स्नेहा विषाद भयात।
अरे थोड़ा हम जो श्लोक बोल रहे हैं वो बोल, गोपियां काम के द्वारा भयात कंसो द्वेषात चद्यादो निप्रा, चद्यादो माने
शिशुपाल
इत्यादि, भय के द्वारा, और नारद इत्यादि भक्ति के द्वारा, पांडव लोग प्रीति के द्वारा, जदवंशी लोग संबंध के द्वारा, जैसे पाए हैं ये सभी लोग भगवान को पाए। पांच रूप से बतलाया, यद्यपि 6 लिखा इस श्लोक में, किंतु पहले वाले श्लोक में बतलाया है 5। कौन कौन वो बतलाया? कामात द्वेषात भयात, चार संबंध और भक्तेश्वरे भक्ति के द्वारा, और एक स्नेह, स्नेह अच्छा, काम देश, देश
स्नेह
भय, स्नेह और भक्ति, ये 5 के द्वारा बतलाया। इसमें बतलाया द्वेष और भय जो है ये विरोधी भाव होने से ये अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, इसलिए भक्ति में आएंगे नहीं, इसलिए उत्तमा भक्ति ये कभी नहीं हो सकते। ये इसमें इसलिए बतलाया गया, जबकि क्रोध से और भय से भी, देश से भी यदि भगवान के प्रति अपने भाव को लगाया जाए तभी वो मुक्त हो जाता है, तो भक्ति के द्वारा क्यों नहीं होगा, इस चीज को दिखलाने के लिए। बल्कि ये बतलाया गया भक्ति के द्वारा, जैसे क्रोध के द्वारा, द्वेष के द्वारा, भय के द्वारा चित्त जैसे भगवान में आविष्ट हो जाता है, भक्ति के द्वारा उतना आविष्ट नहीं होता। अभी हम लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं, ठाकुर जी भी सामने हैं, और एक सांप झट यहां से आकर के इसमें घुस गया ना? क्या करेंगे हम लोग? सब लोगों का जो कुछ है आवेश उस सांप पे आ जाएगा। सांप जब ऐसे करता है तो हमारा मन भी ऐसा करता है, और डर के मारे सब इधर उधर भागेंगे, और सब समय नजर रहेगी सांप के प्रति। यदि सांप इधर में मुड़ता है तो भागेंगे इधर उधर, और कथा सुनना टूनना सब कुछ खत्म हो जाएगा। भय ऐसी चीज है, इसलिए रावण, कंस, शिशुपाल इत्यादि का चित्त एकदम आविष्ट हो गया उसमें, और उनको मुक्ति मिल गई, क्योंकि प्रतिकूल भाव था। इसलिए यदि भक्ति के द्वारा, संबंध के द्वारा, स्नेह के द्वारा यदि चित्त को और काम के द्वारा चित्त भगवान में आविष्ट कर दिया जाए, तो इससे गोलोक वैकुंठ धाम की परम स्थिति तक उसको प्राप्त हो सकती है, किंतु बड़ा भारी कठिन। इसमें से दो को लिया, दो तो उसको बात दे दिया प्रतिकूल होने से, अब रह गया स्नेह, भक्ति, काम और संबंध। इसमें से रागानुगा भक्ति के लिए और सबको बात दे करके संबंधानुगा और कामानुगा को केवल लिया और सबको छाट दिया। क्यों छाटा? स्नेह को क्यों छाटा? स्नेह को छांटा इसलिए, दूर कर दिया। स्नेह एक तो वैदिक भक्ति के अंतर्गत में यदि अर्जुन के साथ में ले लें कृष्ण का स्नेह, पांडवों का स्नेह ना, पांडवों का स्नेह है, तो वो ऐश्वर्य युक्त है। देखो इधर में सुन, समझो वो ऐश्वर्य है, पांडवों का जो स्नेह है ना ऐश्वर्य मूलक, रागानुगा में ऐश्वर्य पाठ, इसलिए उसको काट दिया। खूब गंभीरता से समझना दबाएगा
ना।
और दूसरा एक स्नेह है प्रेम के बाद में, प्रेम स्नेह मान प्रणय, वो प्रेम से ऊपर वाला है, इसलिए रागानुगा भक्ति में उसका कोई उपयोगिता नहीं।
प्रेम जो बोले
वो जो है स्नेह, वो पहले आएगा भाव, भाव तक साधन है, भाव तक साधन, भाव के बाद में प्रेम साधन नहीं साध्य हो गया। अब यही प्रेम अत्यंत बढ़ने पर, जबकि इतना अपने इष्ट देव को देखकर के द्रवित हो जाता है, तब वो स्नेह करता है, इसलिए वो प्रेम से भी ऊपर है, उसका साधन नहीं, इसलिए रागानुगा में उसका उसका कोई उपयोग नहीं है। एक तो वैदिक भक्ति का अंश और इधर में ये, इसलिए उसको छोड़ दिया। और भक्ति रह गई जिसको नारद जी कह रहे हैं भक्त्या वयं विभो, हे विभो भक्ति के द्वारा हम लोगों ने आपको पाया है। नारद जी ने भगवान को कैसे पाया? भक्ति के द्वारा। कैसे भक्ति? चार ऋषि लोग आए या और हजारों ऋषि लोग आए उनके ग्राम में रह करके, चार महीना बीत रहा है, और चार महीने में नियमित रूप में सवेरे स्नान करना और ऋषियों की कुछ सेवा करना और उनके कहने से आदेश लेकर के उनका जूठा प्रसाद पाना और उनकी कथाओं को निरंतर चार महीने तक सुनना और उनके आदेशों को पालन करना, ये हुई वैदिक भक्ति। इसके द्वारा फिर वो चले गए तपस्या करने के लिए आराधना करने के लिए, और उसमें आराधना करते 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 भगवान के रूप का एक झलक मिली, चतुर्भुज रूप, क्योंकि उनका मंत्र भी वही था। जिसका जैसा मंत्र है, मंत्र के अनुरूप यदि साधन कोई करता है तो ठीक वही वस्तु उनको मिलती है। जैसे अब मान लें कि हम लोगों का गोपाल जी का मंत्र, यदि ठीक से हम लोग आज यदि भजन करें गोपाल मंत्र के द्वारा, तो गोपाल ही हमको इष्ट देव के रूप में दर्शन, जैसे गोप कुमार का था। किंतु उसने गोपाल के ऊपर में अधिक जोर दिया, यदि उस गोपाल को मदन गोपाल ले लेता है, मदन गोपाल ले लेता है, तब तो वो फिर पहुंच जाता वहां पर, किंतु उस पर जोर नहीं दिया, जोर दिया
गोपाल,
हाँ जसोदा जी के गोपाल के ऊपर निकल दिया, इसलिए उसको यहीं तक सख्त भाव का गोपाल का। तो क्या बतला रहा
नारद देव,
अच्छा तो वो
तपस्या
के लिए गए, और उन्होंने नारायण को देखा झलक में, फिर नारायण ने झलक दे करके कहा कि अब नहीं दर्शन होगा, क्योंकि यह शरीर तुम्हारा भी शुद्ध होने पर भी इसमें सात्विक कुछ कामनाएं वासनाएं हैं, जब ये सब समाप्त हो करके शुद्ध रूप में तुम हमारा परिकर हो जाएगा, ये शरीर हट जाएगा, तब फिर हमारा नित्य काल के लिए तुम्हारा दर्शन, अभी तुम संसार में घूमते हुए भजन करते रहो और प्रचार करते। तब उन्होंने सब प्रकार की आसक्ति को छोड़ करके, और वो जो था जो मैं एक जगह रह करके निश्चिंत रूप में निर्जन में भजन करूंगा, ये भी भाव जब खत्म हो गया, और केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भगवान की के आदेश को पालन करने के लिए सर्वत्र विचरण कर जब करने लगे, तो वो भाव उनका दूर हो गया। तब उनकी मृत्यु आई, और मृत्यु के ऊपर में पैर रख करके किसी ने देखा भी नहीं, उनका पंचभौतिक शरीर नेपतत बने गिर गया, और परिकर शरीर उनको यहीं पर, उसके द्वारा वो भगवत धाम को चले गए, और फिर चारों तरफ में प्रकट होकर के प्रचार करें, बड़ी भक्ति के द्वारा किया, इसलिए उनकी गति हुई बैकुंठ। किंतु ये कारण था वैदिक भक्ति के वजह, वैदिक बैकुंठ के द्वारा जितना भी प्रेम होगा वो बैकुंठ तक ही ले जाएगा, उसे ऊपर नहीं ले जा सकता। जहां पर कोई हेतु नहीं है, कोई भी हेतु नहीं, स्वाभाविक रूप में प्रेम से उनकी सेवा कर रहा है, सुंदर है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है, बस देखा चित्त वृत्तियां उन पर लग गई, ऐसा प्रेम ही उनको ब्रज में ले जाएगा। अब रह गया संबंध, संबंध पांडवों का भी संबंध है, गोपियों का कृष्ण से कोई संबंध है कि नहीं है, है, यही बात जानना है, इसी के लिए तो ये कहा गोप, यदि वो गोपकुल में गोपियां नहीं आती तो कृष्ण से संबंध कोई होता
है,
गोपकुल में आने की वजह से ब्राह्मणियों को नहीं लिया, उनके अंदर में भी प्रेम था द्विज पत्नियों को और सब, क्योंकि उस कुल में आई हैं गोपी के रूप में, और गोपाल भी गोकुल में आए हैं, इसलिए उनके सखा बने, इसलिए कामानुगा जो भक्त कामात्मिका जो गोपियां उनमें भी संबंध है, किंतु नंद बाबा संबंधानुगा है, क्यों, उनके पिता हैं, जसोदा जी उनकी मैया है, ये सब गोपों के, उनके माता के, उनके पिताजी के, माता जी के संबंधी गोपों के ये लड़के हैं, इसलिए सखा हुए, ये सब संबंध है,
संबंध का संबंध नहीं करती वाला संबंध।